जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 ज जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल नितय गौर जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोदर्शत श्री श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोदर्शत श्री श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा अध्याय तीसवा श्लोक आठवा मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए श्री भगवान उवाच फोर पॉइंट थर्टी पॉइंट एट वरम वृद्धि वृणिध्वम भद्रम वो भद्रम युयम् वे नृपनन्दतः सौहृदे अपृथग् धर्मास् तुष्टोऽहं सौहृदेन वा। श्रीभगवान् उवाच, वरं वृणीध्वं भद्रं वो युवं वे नृपनन्दनाम् सौहृदे नृपनर्थकधर्मास् तुष्टोऽहं सुहृदेन वा। श्रीभगवान् उवाच, वरं वृणीध्वं भद्रं वो युवं वे नृपनन्दनाम् सुहृदेन पृथगद्धर्मास् तुष्टोऽहं सुहृदेन वा। श्रीभगवान् उवाच, वृणं वृणीध्वं भद्रं वो युवं वे नृपनन्दनाम् सौराधीनात् पृथग्धर्मास् तुष्टोऽहं सुहृदेन वा। श्री भगवान् उवाच, वरं वृणीध्वं भद्रं वो युवं वे नृपनन्दना सौरदेन अपृथगधर्मास् तुष्टोऽहं सुहृदेन वा। Word to word translation. श्री भगवान उवाच, भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, वरम आशीर्वाद, वृणीध्वम पूछो, भद्रम सौभाग्य वह आपका, युयम तुम मैं मुझसे, नृपनंदनः हे राजा के पुत्रों, सुहृदेन मित्रता से, अपृथक उदासीन धर्मः व्यवसाय तुष्टः प्रसन्न अहम मैं सुहृदेन मित्रता से वह आपका। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने कहा, राजा के प्रिय पुत्रों, मैं तुम्हारे बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप सभी एक व्यवसाय में लगे हुए हैं, भक्ति सेवा। मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आप सभी के सौभाग्य की कामना करता हूँ। अब तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तात्पर्य, चूंकि राजा प्रजनी बरीक्षित के पुत्र सभी कृष्ण भावनामृत में एक थे, इसलिए भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। राजा प्रजनी बरीक्षित के प्रत्येक पुत्र एक व्यक्तिगत आत्मा थे, लेकिन वे भगवान को परलौकिक सेवा प्रदान करने में एकजुट थे। सर्वोच्च भगवान को संतुष्ट करने या भगवान को सेवा प्रदान करने का प्रयास करने वाली व्यक्तिगत आत्माओं की एकता वास्तविक एकता है। भौतिक संसार में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही लोग आधिकारिक रूप से एकजुट हो, लेकिन उन सभी के अलग अलग हित होते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशेष राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं होती हैं और फलस्वरूप वे एकजुट नहीं हो सकते। इस भौतिक संसार में व्यक्तिगत आत्माओं के बीच वैमनस्य इतना प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत के समाज में भी सदस्य कभी कभी अलग अलग राय रखने और भौतिक चीजों के प्रति झुकाव के कारण अलग अलग दिखाई देते हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत में दो मत नहीं हो सकते। केवल एक ही लक्ष्य है, अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा पर कुछ असहमति हो तो ऐसी असहमति को आध्यात्मिक मान लेना चाहिए। जो लोग वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं किया जा सकता है। यह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को बहुत खुश करता है और अपने भक्तों को सभी प्रकार के आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्रश्नी भरीषित के पुत्रों को सभी वरदान देने के लिए तुरंत तैयार हो गए। यदि सेवा पर कुछ असहमति हो तो ऐसी असहमति को आध्यात्मिक मान लेना चाहिए। जो लोग वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में अलग किया नहीं जा सकता है। यह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को बहुत खुश करता है और अपने भक्तों को सभी प्रकार के आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्रश्नी भरीषित के पुत्रों को सभी वरदान देने के लिए तुरंत तैयार है। आगे के दो श्लोक और उनका अर्थ मैं पढ़ता हूँ। योऽनुस्मरति संध्यायाम इष्माण अनुदिनम नर तस्य भ्रातृश्च आत्म साम्यम तथा भूतेषु सौहृदम्। अनुवाद। भगवान ने आगे कहा, जो लोग हर दिन हर शाम आपको याद करते हैं, वे अपने भाइयों और अन्य सभी जीवों के साथ मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे। 4.30.10 रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहिता स्तुवन्त्य अहम कामवर्ण दस्यं प्रज्ञां च शोभनाम। जो लोग सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव द्वारा रचित स्तुतियों को मुझे अर्पित करेंगे, उन्हें मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। इस तरह वे दोनों अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अच्छी बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम अज्ञान तिमिरंतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज के इस रविवारीय श्रीमद् भागवतम क्लास में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हालांकि मेरी इतनी योग्यता नहीं है वरिष्ठ भक्तों के सामने बैठकर कुछ बताने की, परंतु जो भी मैंने पढ़ा है सुना है उसको मैं दोहराने का प्रयास करता हूँ। तो आज का यह जो श्लोक है और आगे के दो श्लोक है, ये प्रचेताज जो प्रचिनी भरीषित महाराज के पुत्र थे उनके बारे में है। उनको हजारों सालों की तपश्चर्या के पश्चात भगवान विष्णु स्वयं दर्शन देते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं, और यह श्लोक स्वयं भगवान ने बोले हुए तीन श्लोक है। पहले तो श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं आपकी जो एकता है, एकजुट है, उसको देख के बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि आप हमसे वरदान मांगो। दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति आपका नित्य मतलब रोज शाम को स्वयं स्मरण करेगा, उसको उसका अपने भाइयों के आपस में तो प्रेम लगेगा ही या एकजुट रहेंगे ही, उसके साथ ही साथ अन्य प्राणियों के प्रति भी वे सुरुद रहेंगे। और तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो यह रुद्र गीत है, भगवान शिव द्वारा रचित जो प्रार्थनाएं हैं, वो सुबह और शाम मुझे अर्पित करेंगे, माने भगवान को अर्पित करेंगे, तो उनको उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, उसके साथ ही साथ उन्हें अच्छी बुद्धि भी मिलेगी। तो भगवान का यह विशेष अनुग्रह है कि वे अपने भक्तों को उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, साथ ही साथ उनको अच्छी बुद्धि दे देते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े महान महाजन भक्तों में भी कभी कभी भौतिक इच्छाएं होती है, जैसे कि ध्रुव महाराज को उनके ग्रेट ग्रैंडफादर माने ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था। तो इस प्रकार की एक प्रकार से वो देखी जाए तो भौतिक इच्छा है, परंतु भगवान की ऐसी महान अनुकंपा है कि वे अपने भक्तों की इच्छा तो पूरी कर देते हैं, उसके साथ ही साथ उसको अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि उसकी आसक्ति जो है वो कम हो जाए। तो आप में से सभी को यह कथा तो पूरी अच्छी तरह से पता होगी ही, प्रचिनी भरीक्षित महाराज और उनके पुत्रों की। फिर भी एक संक्षिप्त में 2 मिनट में मैं वो कथा दोहराता हूँ। तो महाराज प्रचिनी भरीक्षित, उनके जो पुत्र थे उनको प्रचेतास कहा जाता है। महाराज प्रचिनी भरीक्षित के सलाह से वे सभी जन राज्य करने से पूर्व या कोई भी जिम्मेदारी लेने से पूर्व तपस्या करने के लिए जाते हैं, और जलाशय में पानी के नीचे हजारों हजारों सालों तक, लगभग 10,000 सेलिस्टियल ईयर्स, इतने सालों तक वे तपश्चर्या करते हैं। उसके पूर्व उनको शिवजी से उनकी भेंट होती है और शिवजी उन्हें प्रार्थना बताते हैं, रुद्रगीत, और वह प्रार्थना करते करते उनको इतने सालों बाद भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु वहाँ पे स्वयं आते हैं उनको गरुड़ पर बैठकर, और उनको दर्शन देते हैं, और भगवान उनसे बोलते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, या आप आशीर्वाद मांगो। तो जैसे ध्रुव महाराज ने कहा था कि हे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए तपस्या किया था या आपके पास आया था, परंतु आपके पास आपका दर्शन पाके मुझे मानो हीरा डायमंड मिल गया है, तो अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। उसी प्रकार प्रचेतास भी बोलते हैं कि हमारी कोई ऐसी भौतिक इच्छा नहीं है, परंतु हमें केवल एक ही आशीर्वाद दीजिए कि हम कितने भी जन्म लें या कहीं भी इस भौतिक जगत में घूमें, तो हमें हमेशा एक वरिष्ठ भक्तों का संग, एसोसिएशन मिलता रहे। इतनी प्रार्थना या इतना आशीर्वाद मांगते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इतना तो आशीर्वाद हम देंगे ही, उतना तो दे ही देते हैं कि आपको यह तो मिलेगा ही, अंत में आप मेरे धाम में भी आओगे, और उसके साथ ही साथ एक सूचना भी देते हैं कि एक कन्या का नाम बताते हैं, वो प्रमोलोचा इसकी अप्सरा थी, उनकी कन्या है, उससे आप विवाह करो। वृक्ष उसको संभाल रहे हैं अभी, उससे आप विवाह करो, और प्रजनन का भी जो कार्य है उससे आपको एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा, और वो उसकी मदद से आप सेवा आपका अच्छे से हो जाएगा। तो इस प्रकार कथा आगे बढ़ता है। तो इस श्लोक में आज भगवान उनका जो एकता है, एकजुट है, उसका स्तुति करते हैं। तो आज का जो विषय है कथा का, उसमें हम इस एकजुटता यह विषय पे ही हम चर्चा करेंगे। तो इस तात्पर्य में कुछ लाइंस हमने पढ़े, वो मैं एक बार दोहराता हूँ हमारे स्ट्रेस देने के लिए उसके ऊपर। सिंस द सन्स ऑफ किंग प्रचिनी भरीक्षित वेर ऑल यूनाइटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, द लॉर्ड वॉज वेरी प्लीज्ड। तो भगवान की भक्ति करते हुए अगर भक्त या कोई भी व्यक्ति अगर एकजुट रहकर वो करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक वाक्य हमने तात्पर्य में पढ़ा। दूसरा है, रियल यूनिटी इज द यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल सोल्स इन अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड। और सच्ची एकता क्या है कि सभी जन मिलकर भगवान की सेवा करें। हाँ, आज की युग में अलग अलग कारणोंवश लोग एकत्र आते हैं, क्लब बनाते हैं किधर किधर, या मतलब अलग अलग गुट बनाते हैं अलग अलग चीज को केंद्र में रखते हुए। कभी कभी डॉक्टर्स सब एक साथ आ जाते हैं तो डॉक्टर्स एसोसिएशन बनाते हैं, कभी कभी इंजीनियर्स एक साथ आते हैं इंजीनियर्स एसोसिएशन बनाते हैं, कभी कभी लेबर्स एक साथ आ जाते हैं तो उसका कामगार कुछ यूनियन हो जाता है। तो ऐसे यूनियन काफी है, परंतु सबका उद्देश्य अलग अलग है। तो हमें चाहिए क्या कि अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड। तो हमारा भक्तों का यूनिटी किसके लिए होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। प्रिंसिपल्स, आगे प्रपट में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसएग्रीमेंट इज सो स्ट्रांग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड दैट वी अमंग्स डिवोटीज आल्सो सी समटाइम्स डिसएग्रीमेंट। भक्तों में भी कभी कभी मतभेद होता है, पर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, एक्चुअली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देर कैन नॉट बी टू ओपिनियंस, देर इज ओनली वन गोल दैट इज टू सर्व कृष्णा टू वंस बेस्ट एबिलिटी। परंतु कृष्ण भावना में दो मत हो ही नहीं सकते, सबका उद्देश्य एक है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। इफ देर इज सम डिसएग्रीमेंट ओवर सर्विस सच डिसएग्रीमेंट टू बी टेकन स्पिरिचुअल, अगर कुछ सेवा में कुछ मतभेद है तो उसको आध्यात्मिक समझ लेना चाहिए, उसको भौतिक स्तर पे उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। ये सब तात्पर्य में लिखा है। तो इसमें से हमें समझता है कि रियल यूनिटी क्या है। रियल यूनिटी इज यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल सोल अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई सुप्रीम लॉर्ड। तो हमने देखा कि सच्ची एकता क्या है, कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ने के लिए सबजन एक साथ आना। प्रभुपाद तात्पर्य में यूनाइटेड नेशंस का भी उदाहरण देते हैं कि यूनाइटेड नेशन में अलग अलग देश एकत्र आए हैं, अपने अपने ध्वज उन्होंने लगाए हैं, परंतु सबका एक राष्ट्रीय स्तर पर एक एम्बिशन है, कुछ तो अलग उद्देश्य है, इसलिए सब जन एक मत पर नहीं आते हैं और उससे एक्चुअल रियल यूनिटी तैयार नहीं होती है। तो इसी प्रकार अगर हम भक्तों के संग में भी अगर अपना खुद का एजेंडा या खुद का इंडिविजुअल एम्बिशन लेके अगर भक्ति करने का प्रयास करते हैं या साथ में जुड़ने का प्रयास करते हैं तो शायद हम में भी यूनिटी नहीं आ पाएगी। हमारा सबका अगर उद्देश्य एक है तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे और वही सच्ची योग्यता है, सच्ची एकजुट है। तो एकता क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिटी। तो एक है टू प्लीज द लॉर्ड, जैसे इस श्लोक में भगवान ने बताया, क्योंकि आप सब लोग एकजुट है, एक साथ मिलकर आपने भगवान मतलब की प्रार्थना की, तपस्या की, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें एकजुट रहना चाहिए, है ना, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ समसिद्धिर हरितोषणम। जीवन का उद्देश्य है कि हमारी जो भी एक्टिविटी है, हम जो कुछ करते हैं उससे हरि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी जी संतुष्ट होने चाहिए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें एकजुट रहना है। दूसरा लाभ एकता का है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम बचपन में ये कथा सुनते थे, एक पिताजी थे, उनके पांच पुत्र थे, वो हमेशा झगड़ते थे, कुछ भी कारण से उनका एक मत नहीं बनता था, अलग अलग विचार। तो उनके पिताजी को लगा कि अरे मेरे पश्चात मेरे पांचों पुत्र अगर एक दूसरे में वैर रखेंगे, द्वेष रखेंगे, झगड़ा करेंगे तो इनको तो कोई भी ठग लेगा, तो इससे अच्छा है कि ये पांच जन एकत्र आए, यूनाइटेड रहे, एक साथ रहे, ताकि इनका ताकत बना रहे, इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए और ये भी जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छी प्रकार से अच्छी तरह से कर पाए। तो उन्होंने पांचों लड़कों को एक एक लकड़ी दी थी, लकड़ी, और कहा कि आप एक लकड़ी तोड़ के दिखाओ। तो इंडिविजुअली सभी लड़कों ने इंडिपेंडेंटली एक एक लकड़ी तोड़ के दिखाई, और बाद में उनके पिताजी ने कहा कि अभी ये पांचों लकड़ियां आप एक साथ जोड़ लो और ये तोड़ने का प्रयास करो। तो पांच लकड़ियां एक साथ तोड़ पाए क्या? नहीं। तो इससे सिंपल सी स्टोरी है, परंतु समझने वाली बात है कि अगर एक साथ अगर जुट गए पांच लोग तो उनको तकलीफ देना या तोड़ना या उनको हानि पहुंचाना डिफिकल्ट है। तो बच्चे भी वो सीख ले लिए और सीख गए। उसी प्रकार भक्तों को चाहिए कि हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हमने पहले कहा कि अलग अलग विषयों को लेकर लोग एक साथ आते हैं और अपनी जो इच्छा आकांक्षा जो एम्बिशंस है उसको पूरा करते हैं। मानो कोई कंपनी में लेबर यूनियन है तो उनको अगर ये यूनाइटेड हो जाते हैं तो उनका जो भी मांग है वो मैनेजमेंट को कभी कभी सुनना पड़ता है। उसी प्रकार अलग अलग, अभी डॉक्टर्स की कोई एसोसिएशन रहती है उसमें अगर उनका सैलरी है कि वॉट एवर रीजन, वो भी कभी कभी स्ट्राइक करते हैं और प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को, तो उनको भी उनका सुनना पड़ता है। तो उसी प्रकार उल्टा भी है कि अगर आपका माइनॉरिटी है, आपके साथ कोई आपको सपोर्ट ही नहीं, आप अकेले कहाँ पे कुछ काम करने जा रहे हैं, तो नेचुरली लोग आपको कीमत नहीं देते हैं। परंतु आप अगर एकजुट होकर कुछ कार्य करते हैं तो आपका वो जो कार्य का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है। मानो संकीर्तन के लिए भी सुनो, हम अकेले जाके कीर्तन करते रहे तो पता नहीं कितने लोग अपने से आकर्षित होंगे, परंतु इतने सारे भक्त हम सब जन रास्ते पे उतरे और कीर्तन करते हुए जा रहे तो हमारे भक्तों की संख्या को देखकर लोगों को भी उत्साह आता है, और एक साथ और नॉन ड्यूटी जो भक्त भी नहीं है वे भी अपने संकीर्तन में जुट जाएंगे। तो यूनाइटेड अगर हम रहेंगे तो हमारा जो भी उद्देश्य है, जो भी भक्ति का कार्य है, उसमें भी सफलता मिलने का संभावना या वो ज्यादा है। तो पहला था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, दूसरा कि हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे सेवा, तीसरा है कैलामिटीज कैन बी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस व्हेन वी आर टुगेदर। कभी कभी अभी भौतिक जगत में हम रह रहे हैं तो हमारे जीवन में भी समस्याएं आती है, अलग अलग समस्या आती है, कभी छोटी आती है, कभी इंडिविजुअल समस्या आती है, कभी कभी कलेक्टिव समस्या आती है ना। तो हमने देखा कि गोवर्धन लिफ्टिंग का जो पास टाइम है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया, एक प्रकार से वृंदावन वासियों के लिए एक कलेक्टिव समस्या थी, कैलेमिटी थी, कैटास्ट्रॉफ, बड़ा बड़ा समस्या थी। ऐसी परिस्थिति थी कि मानो पूरा वृंदावन बाढ़ में बह जाए। इंद्रदेव ने इतनी जोरदार बारिश करवाई कि पूरा वृंदावन बह जा सकता था, माने जो प्रलय के समय जितना बारिश होता है उस प्रकार से संवर्तक जो ये थे क्लाउड्स, तो उनको बता के बहुत सी बारिश करवाई। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपने उंगली पे उठाया और सभी ब्रजवासियों को वो पर्वत के नीचे आश्रय दिया, और भगवान श्री कृष्ण के पूरे आयु काल में जितने भी साल वे इस भौतिक जगत में रहे उनके भक्तों के साथ, उसमें वो जो 7 दिन थे वो सबसे उत्कंठा था, वर्धक या बहुत ही आनंद देने वाले थे, क्योंकि ये 7 दिनों में गोपियों को और पेरेंट्स जो नंद बाबा, यशोदा मैया और गोप गोपियों के जो पेरेंट्स थे उनको, छोटे बच्चों को, गायों को, बछड़ों को, सबको 7 दिन 7 रात कंटिन्यू लगातार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ, और अलग अलग भाव में वे उनसे पास टाइम्स भी वहां पे हो गए। तो ये भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा रही, और ये जो कैलेमिटी थी, क्योंकि वे सब जन एक साथ थे, वे सब जन एक साथ वे 7 दिन 7 रात रहे तो उनको इसका आनंद मिला। तो भले ही बाहरी रूप से एक बहुत बड़ा संकट आया था, परंतु आंतरिक रूप से उन्होंने इसका आनंद उठाया। दूसरा उदाहरण है कैलेमिटी जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बना बनने का। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब न्यू वृंदावन में थे, उन्होंने उनके एक कथा में ये पास टाइम बताया है। तो वहां पे एक बार वामन द्वादशी थी, और उसी दिन दोपहर की आरती के समय ही अल्टर में आग लग गई, मानो आरती करते समय ही उससे आग लग गई, और पूरे पर्दे और विग्रहों के कपड़े इस सभी को आग ने लपेट लिया, और इतनी बड़ी आग, परंतु सभी भक्त उसी समय एक साथ जुट गए भगवान की सेवा में। तुरंत कुछ भक्तों ने फायर एक्सटिंग्विशर लाया तो उससे आग बुझाई, और सब पहले तो आग शांत हो गई, उसके बाद पूरा गंदगी हो गया था वहां पे, क्योंकि आग बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर रहते हैं उसमें एक टाइप का एक्सटिंग्विशर रहता है, उससे पाउडर बाहर आता है, तो पाउडर जो व्हाइट कलर का था वो पूरे भगवान के विग्रहों के ऊपर, अल्टर में, हर जगह पे चिपक गया था। तो फिर और भगवान के सभी ड्रेसेस और पर्दे सभी चीजें जल गई थी। तो उसी दिन तुरंत सभी जो कम्युनिटी गोवर्धनी को विलेज से भी, वो बहुत बड़ी कम्युनिटी थी है, तो वहां पे सभी भक्त एक साथ आ गए और उन्होंने उसी दिन लगभग 2-4 घंटे में सब जनों ने मेहनत कर भगवान के लिए, भगवान को पूरी तरह से साफ भी किया, अल्टर को पूरी तरह से साफ किया और भगवान के ड्रेसेस भी बनाए और पर्दे भी बनाए, गार्लैंड में सभी सेवाएं फास्ट हो गई। तो वो परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज जी कहते हैं कि वो जो सेवा का भाव था या जो इमरजेंसी में हम सब ने एकजुट होकर सेवा की, वो मेरे जीवन का एक बहुत ही संस्मरणीय क्षण है और वो मतलब उनके उनको उसमें भी बहुत ही आनंद आया। तो एक रूप से, बाहरी रूप से देखेंगे तो एक प्रकार का कैलामिटी था, परंतु आंतरिक रूप से उनको उसमें आनंद आया, बहुत ही अच्छा आनंद आया। और एक उदाहरण है, रशिया में भगवद गीता के ऊपर बैन आया था एक बार, तो उस समय भी रशिया के सभी भक्त, केवल रशिया के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी इस्कॉन के भक्त और भी जो सनातन धर्म को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग एकजुट हो गए और उसकी वजह से भगवद गीता के ऊपर का तो बैन उठा ही, उसके साथ ही साथ भगवद गीता का और भी प्रचार प्रसार बढ़ गया। तो इस प्रकार कभी कभी कैलामिटीज भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं अगर हम सब भक्त एकजुट हो जाते भगवान की सेवा में। तो ये सब रीजन है क्यों हमें एकजुट रहना चाहिए, क्यों एकता की क्या आवश्यकता है और फिर सच्ची एकता कैसे लाई जाए। एकता की आवश्यकता हमें समझ गई कि भगवान को प्रसन्न करना है, एकजुट रहेंगे तो हम टिके रहेंगे और कैलेमिटीज भी हमारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, परंतु अच्छी एकता लानी कैसी है, तो सिंपल है, बाय कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। अगर भगवान श्री कृष्ण को हम हमारे जीवन के केंद्र में रखेंगे तो नैसर्गिक रूप से हम एक हो जाएंगे। फैमिली लाइफ में हम देखते हैं कि बच्चे केंद्र में होते हैं, कि बच्चों को देखकर फैमिली चलता है कि अरे बच्चे के लिए तो करो, अभी मम्मी बोलेंगी अरे मेरा नहीं तो नहीं इसका तो सोचो करो, या पापा बोलेंगे इसके लिए कुछ करो। तो यूजुअली बाहर का बोल रहा हूँ, वैष्णव के घर में तो भगवान श्री कृष्ण ही केंद्र में रहते हैं, परंतु बाहरी दुनिया में हम देखते हैं गृहस्थों के जीवन में भी कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, तो हमारे मराठी में बोलते हैं कि मुलांकड़े बगुन रहते हैं नस्तो तुमच्याकडे राहण्यासारखं काहीच नाही। मतलब बच्चों को देख के आपके साथ रह रहे, नहीं तो आपके तरह रहने का कुछ है ही नहीं। तो ऐसा मतलब बच्चे उस घर का केंद्र होते हैं, परंतु बच्चे भी कभी बड़े हो जाते हैं, कुछ सालों बाद बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो फिर क्या केंद्र रहेगा। शुरुआत में इसी विषय में मैं कल पढ़ रहा था भागवतम, उसमें लिखा था कि गृहस्थ जीवन में एक स्टोरी, एलेगोरिकल स्टोरी बताते हैं, उसमें लिखा था कि एक हिरन है, हिरन डियर, वो अच्छी अच्छी घास जंगल में खा रहा है, इतना घास खाने में मग्न है कि उसको पता नहीं कि पीछे से वाघ टाइगर आके उसको कभी भी झपट लेगा, खा लेगा। उसके साथ ही साथ एक हंटर, एक जो शिकारी है, वो भी बाण लेकर और धनुष लेकर तैयार है, कभी भी ये हिरण को मार सकता है, परंतु हिरण इतना मग्न है खाने में और खाते खाते उसको हमिंग बीज, मतलब जो मधुमक्खी रहती है उसका आवाज सुन रहा है, उसको बहुत आनंद आ रहा है। उसी प्रकार लिखते हैं प्रभुपाद जी कि जो गृहमेदी व्यक्ति है वह अपने पारिवारिक जीवन में इतना व्यस्त है और इतना उसका उपभोग लेने में मग्न है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि किस समय पर उसका समय खत्म हो जाएगा और डेथ, मृत्यु रूपी काल या शिकारी उसको झपट लेगा। और उसमें लिखा था कि बच्चों का जो स्वीट वर्ड्स है, कि जो बहुत अच्छे से बच्चे बोलते हैं, तो वो जो आवाज है वो हमिंग बीज की तरह उसको और रिझा रहा है। तो भौतिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे केंद्र होते हैं, परंतु और एक इसमें लिखा है कि अगर हमें एकजुट होना है भक्तों को, तो हमारे जीवन का केंद्र कौन होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। इसका उदाहरण हमने भी पहले सुना है कि एक जलाशय है, उसमें अगर हम एक पत्थर डालेंगे तो उसके जो सर्कल्स बनते हैं तो एक एक ही सर्कल आगे आगे बढ़ता है। हाँ, परंतु अगर मल्टीपल अगर अलग अलग पत्थर डालते हैं तो वो सभी सर्कल्स एक दूसरे से क्लैश होते हैं, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। उसी प्रकार अगर हम सबका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो नैसर्गिक रूप से हमारा जीवन भी भक्तिमय जीवन भी बहुत ही आनंददायी होगा, अच्छा होगा। फिर ब्रज बिहारी प्रभु जी ने एक बार एक प्रवचन में एक कथा बताई हस्बैंड और वाइफ की। तो एक बार वे ट्रेन में जा रहे थे और उनके सामने एक हस्बैंड वाइफ कपल, नॉर्मल जो ड्यूटी नहीं थे टाइप काइंड ऑफ, तो वे बैठे हुए थे, पर कुछ कारणवश उनमें मतभेद हो गया, झगड़ा चालू हो गया और झगड़ा आगे आगे बढ़ ही रहा था। तो प्रभु जी तो ब्रह्मचारी है और उनके साथ और एक ब्रह्मचारी थे, तो उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लगा, अभी यहाँ पे क्या करें, माने अभी ऐसी सिचुएशन में अभी उनको कुछ बताने जाओ तो शायद वो अपने ऊपर भी गुस्सा कर दे। तो उन्होंने सोचा कि हम कीर्तन करते हैं। तो प्रभु जी और वो दूसरे प्रभु जी उन्होंने करताल निकाली और हरे कृष्ण कीर्तन गाने लगे। 2 मिनट 5 मिनट हो गए तो फिर वो जो नॉन ड्यूटी हस्बैंड वाइफ थे उनको भी यह कीर्तन में बहुत आनंद आया। पहले तो वे जस्ट शांत हो गए, शांत होने के बाद उन्होंने ये प्रभु जी को देख के और एक दूसरे को देख के छोटा सा स्माइल दिया और फिर वे कीर्तन में बोल बोलने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन के बोल बोलने लगे और फिर ताली भी बजाने लगे। और कुछ देर के बाद बहुत ही अच्छे से वहाँ का पूरा जो हम अक्सर ट्रेन में प्रवास करते हुए देखते हैं, जब भी भक्त कीर्तन करते हैं तो बाकी के लोगों को भी उसमें बहुत ही आनंद आता है। तो इस प्रकार उन दोनों में का झगड़ा तो भूल ही गए, उनके जीवन में भी आनंद आ गया। तो अगर भगवान श्री कृष्ण अपने केंद्र में है तो नैसर्गिक रूप से हम एक बने रहेंगे, एकजुट रहेंगे और हमारे जीवन में भी आनंद आएगा। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि चैंट एंड बी हैप्पी, जप करो या भगवान श्री कृष्ण का नाम लो और सुखी हो जाओ। परंतु सुखी होने के लिए ये सब भी होना जरूरी है। अगर हम एकजुट रहेंगे भगवान की सेवा में, एक साथ मिलकर सेवा करेंगे तो हमको ज्यादा आनंद आएगा। और दूसरा पॉइंट है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, हम पढ़ेंगे एज इट इज, प्रिंसिपल ऑफ डिसएग्रीमेंट इज सो स्ट्रांग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड दैट वी सी इट अमंगस्ट फॉलोअर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो समटाइम्स। इस दुनिया का एक स्वरूप ही इस प्रकार है कि नैसर्गिक रूप से दो व्यक्तियों में मतभेद होते हैं। इवन कृष्ण भावना में इस्कॉन में भी कभी कभी दो व्यक्तियों में मतभेद होते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, एक्चुअली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देर कैन नॉट बी टू ओपिनियंस, देर इज ओनली वन गोल टू सर्व कृष्णा टू वंस बेस्ट एबिलिटीज। परंतु कृष्ण भावना में दो ओपिनियन हो ही नहीं सकते, दो विचार हो सकते हैं परंतु दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। किसी का विचार ऐसा हो सकता है कि मैं इस प्रकार के सेवा करूंगा, दूसरे व्यक्ति का विचार हो सकता है कि नहीं मैं इस प्रकार से सेवा करूंगा, परंतु दोनों का केंद्र एक ही है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इफ देयर इज सम डिसएग्रीमेंट ओवर सर्विस सच डिसएग्रीमेंट इज टू बी टेकन स्पिरिचुअल। अगर ऐसा थोड़ा मतभेद है तो उसे स्पिरिचुअल समझकर नजरअंदाज करना चाहिए, उसका बवंडर नहीं बनाना चाहिए कि अरे ये दोनों में मतभेद है। अरे मतभेद है पर सेवा की, भगवान की सेवा के लिए मतभेद है, दोनों भी भगवान की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इफ देर इज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बिटवीन टू वैष्णवाज इवन अप टू द स्टेज ऑफ क्वारलिंग एंड कॉलिंग नेम्स टू ईच अदर, बट इफ दे हैव कृष्णा इन द सेंटर ऑफ देयर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, अ A sane man will not take side of any of two because it may lead to Vaishnava Aparadh. Vrindavan Das Thakur कहते हैं अगर दो वैष्णव झगड़ रहे परंतु दोनों का डिसएग्रीमेंट का केंद्र भगवान श्री कृष्ण है, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, तो हमें उनके झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए, किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, अपना वैष्णव अपराध हो जाएगा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेन भुजाए, क्योंकि वैष्णव जो करते हैं वो कभी कभी हमको समझता नहीं है, विज्ञ व्यक्ति जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसको भी कभी कभी नहीं समझता है। माध्वाचार्य द्वैतवाद का फिलोसॉफी बताते हैं उसमें नो टू लिविंग एंटिटीज आर सेम, ईच हैज यूनिक, ईच वन इज यूनिक इन क्वालिटी, एवरी लिविंग एंटिटी हैज यूनिक रिलेशनशिप विद कृष्णा। अभी देखिए हम मराठी में बोलते हाथाची पांच बोट सारखी नसतात, हाथ की पांच उंगलियां सेम है क्या? नहीं, एक लंबी है, एक छोटी है, एक अलग दिशा में काम करती है, परंतु अगर हमको कुछ काम करना है तो पांचों को एक साथ आएंगे तो ही हम कुछ काम कर पाएंगे। उसी प्रकार कोई भी दो व्यक्ति, ये तो भगवान की महानता है, विशेष है कि दो व्यक्ति सेम नहीं है। आज कंपनी में कुछ चीज हम बनाते हैं तो एक ही सिरे की सभी चीजें बनती है, एक प्रकार की सभी बॉटल, एक प्रकार का पेन, एक प्रकार का चश्मा, सभी एक प्रकार की चीजें बनती है, परंतु भगवान ने हमें इस प्रकार से बनाया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति अलग है। हम देखते हैं कि दो जुड़वा भाई भी सेम नहीं रहते, विचारों में तो रहते ही नहीं, विचार तो अलग अलग ही रहते हैं, तो सेम ऐसा एज इट इज कॉपी ऐसा नहीं रहता है। भगवान ने हमको बनाया है सबको इंडिविजुअल, हर व्यक्ति एक अलग स्वतंत्र व्यक्ति है, परंतु हम सबको एक साथ आके भगवान की सेवा करनी है। तो एवरी ड्यूटी हैज डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग दैट व्हाट विल प्लीज कृष्णा एंड प्रभुपाद मोर। तो हर एक का विचार करने की पद्धति अलग है और हर एक का अगर उद्देश्य एक है कि भगवान को और प्रभुपाद जी को कैसे संतुष्ट किया जाए, तो सब ऑल कैन बी अकोमोडेटेड, दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। ओपिनियंस में वैरी बट ड्रेसिंग ड्यूटीज कुकिंग, मतलब वही कि हर एक को, किसी किसी को कोई सेवा में ज्यादा रस रहता है। अभी कोई व्यक्ति को भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करने में ज्यादा आनंद आता है और किसी किसी को बैकअप सेवा करने में ज्यादा आनंद आता है, परंतु एज लॉन्ग एज वो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अश्वत्थामा की कथा देखते हैं कि किस प्रकार अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सोते हुए उनका वध कर दिया, उनको मार दिया। तो एक माता के लिए ये बहुत ही दुखदायक घटना है कि अपने पांचों पुत्रों को एक साथ खो देना, वे भी छल पूर्वक, तो उसके लिए तो बहुत ही दर्द वाली घटना थी। और भीम और अर्जुन, उन्होंने उनका जो अश्वत्थामा था जिसने ये दुष्कृत्य किया था उसको पकड़ भी लिया, उसको मारने के लिए भी वे तैयारी थे, और भीम जी का स्पष्ट मत था कि अभी अश्वत्थामा को मार देना चाहिए। और परंतु द्रौपदी क्योंकि वैष्णवी है वो, उसका हृदय इतना कोमल है कि वे कहती है कि जो दुख जो कष्ट मैं सह रही हूं मेरे पुत्रों के वियोग से, क्योंकि मेरे पुत्रों के मृत्यु से, वो मैं हमारी गुरु माता जो है कि द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, उनको मैं वो दुख नहीं देना चाहती, तो मेरा स्पष्ट मत है कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए, उसको नहीं मारना चाहिए। तो एक प्रकार से दो वैष्णव है, भीम जी भी भगवान के अनन्य भक्त है, द्रौपदी भी भगवान के अनन्य भक्त है, परंतु दोनों में मतों में विभिन्नता है, और विभिन्नता एकदम एकदम टोकाची बोलता हूँ, मतलब एक्सट्रीम है, इसको लगता है छोड़ देना चाहिए, इसको लगता है कि मार देना चाहिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनके केंद्र में थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया और भगवान ने सोल्यूशन दिया कि अश्वत्थामा का उसका जो मनी है स्पेशल ज्वेल उसके फोरहेड पे सर पे जो था उसको निकाला जाए और उसको एक स्पेशल हेयर कट दिया जाए ताकि उसका जो अहंकार है या भी जो भी है वो खत्म हो जाए। इससे भीम भी प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्हें पता है फॉर वन हु हैज रिसीव्ड ऑनर डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। जिसको आदर आतिथ्य मिला हुआ है बहुत ही या प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसका अगर इतना बड़ा अपमान होता है तो उसके लिए वो मृत्यु से भी ज्यादा है। तो उनका इच्छा पूरा हो गया कि अश्वत्थामा को मारने का। और द्रौपदी को भी प्रसन्नता हो गई कि भले उसका हेयर कट कैसा भी रहे पर उसकी माता के लिए उसका पुत्र जीवित तो है। तो इसमें द्रौपदी भी प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के केंद्र में है तो एक प्रकार से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो अलग अलग मत भी है तो उन्हें मैनेज किया जा सकता है विदाउट कोई प्रॉब्लम। आगे लिखते हैं मटेरियल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस बारे में लिखते बोलते हैं कि मटेरियल प्रिंसिपल इज मिजरी वांट्स कंपनी। मटेरियली कंडीशन पर्सन वॉन्ट अदर पर्सन शुड ऑल्सो बी मिजरेबल लाइक मी। इफ आई एम मिजरेबल दैट ऑल शुड बी मिजरेबल। मतलब नेचुरली ऐसा लगता है कि मिजरी फाइंड्स कंपनी। उनको लगता है कि मुझे जो दुख हुआ है वो दूसरे को भी दे। अभी हम कॉलेज में पढ़ते थे तो रैगिंग होता था। रैगिंग मतलब रैगिंग क्यों होता है देखा तो क्या, क्योंकि मेरा रैगिंग हुआ है तो मैं मेरे जूनियर का रैगिंग करूंगा। तो ये परंपरा ऐसे चलाते लोग कि मुझे जो कष्ट हुआ है मैं दूसरे को कष्ट दूंगा। परंतु जो वैष्णव होते हैं जैसे द्रौपदी महारानी जैसे उनको ये मटेरियल प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। वो ऐसा नहीं सोचते कि मुझे जो तकलीफ हुआ है वो दूसरे को भी हो। उल्टा सोचते हैं कि अरे मुझे जो तकलीफ हो रहा है मेरे पुत्रों को गंवाने की वजह से वह दुख वह तकलीफ दूसरे किसी को ना हो। तो ये वैष्णव का स्वभाव क्या है, पर दुख दुखी। दूसरे के दुख में उनको दुख होता है दूसरे के आनंद में उनको आनंद होता है। तो ये जो मटेरियल प्रिंसिपल है मिजरी वांट्स कंपनी ये द्रौपदी को लागू नहीं हुआ। ये जो कलयुग है इसको बोलते हैं एज ऑफ कॉरल एंड हिपोक्रेसी। तो गौरंग प्रभु हमेशा प्रवचन में बोलते हैं कि कलयुग तो यही है कॉरल एंड हिपोक्रेसी का युग है। इसमें झगड़ा होता है नहीं तो हम दाम्भिक हो जाते हैं जो नहीं करते ऐसा बताते हैं। तो आप अगर अकेले रहोगे तो आप हिपोक्रेट बन जाओगे आप फंसाने लग जाओगे लोगों को। और आप अगर भक्तों के संग में रहोगे तो कभी कभी अनबन हो सकती है कभी कभी झगड़ा भी हो सकता है क्योंकि ये युग ही इस प्रकार का है कि क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो हमें चाहिए कि वैष्णव के साथ रह के एकाधी बार थोड़ा सा अनबन हो भी गई तो उसको सीनियर्स की मदद से छुड़ा लेंगे परंतु हमेशा वैष्णवों के साथ रहेंगे ना कि अकेले रहकर दाम्भिक बन जाएंगे हिपोक्रेट बन जाएंगे। क्योंकि अकेले में तो भक्ति होना संभव ही नहीं है और भगवान को भी ये प्रसन्न नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं आप अगर एकजुट है तो हम प्रसन्न हैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इतना ही क्या हमारे तो हम तो बहुत ही कनिष्ठ ये भक्त है परंतु राधा रानी और चंद्रावली ये जो कि भगवान के मतलब आंतरिक शक्ति है और परम मतलब जो भक्ति का एक हाईएस्ट स्टेज है उनमें भी मतभेद है। राधा रानी एक अलग प्रकार से सेवा करती है चंद्रावली अलग प्रकार से सेवा करती है। परंतु ऐसा है क्या कि उनकी सेवा की वजह से या उनके जो मतभेद है वो देखकर भगवान श्री कृष्ण असंतुष्ट है। भगवान तो दोनों से प्रसन्न नहीं है ना। और उनमें भी ऐसा नहीं कि मतलब जैसे अभी मैं चंद्रावली से बात ही नहीं करूंगी ऐसा कभी राधा रानी नहीं। तो वैष्णव में ऐसा होना चाहिए कि भले ही हमारे मतभेद हो अलग अलग प्रकार से हमको सेवा करने में उत्साह आनंद आता हो भगवान की सेवा करने में फिर भी हम दोनों में या वैष्णव में कभी ऐसा अनबन ना हो कि हम बात ही नहीं करेंगे हम मुंह ही नहीं देखेंगे। ऐसा कभी कभी बाहर की दुनिया में देखा जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं डाइवर्सिटी इज इंटीमेट। परम पूज्य राधा स्वामी महाराज के प्रवचन में वो बताते हैं डाइवर्सिटी इज इंटीमेट डीपेस्ट रसाज ऑफ लव एंड दिस डाइवर्सिटी शुड मेक अस मोर इंटीमेट विथ ईच अदर एंड टू कृष्णा। अभी क्या है, एक ही रस या एक ही चीज जैसे मैंने बोला तो वो भगवान को भी पसंद नहीं होता है, उनको भी वैरायटी पसंद है। वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ, है ना। तो भगवान को भी वैरायटी पसंद है, तो अलग अलग प्रकार की भक्त अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं तो भगवान को क्या अप्रसन्नता नहीं होती है। तो हमको देखना चाहिए कि उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, और अगर एक साथ मिलकर हम सेवा करते हैं वही सेवा, तो और हमारे बीच में भी रिलेशन अच्छा रहेगा। महाराज जी अपने प्रवचन में कहते हैं, अभी भक्तों में कृष्ण नाम प्रभु, अपने चौपाटी के वरिष्ठ वैष्णव भक्त महाराज जी को इसी प्रवचन के अंत में प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी, वैष्णव में ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि डिटी वर्शिप, अर्च विग्रहों की जो ड्रेसिंग है या सेवा है, उस वो सेवा मिलने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं कि अरे मुझे कभी गोपीनाथ का ड्रेसिंग करने मिलेगा या वृंदावन बिहारी जी का ड्रेसिंग करने मिलेगा, इसके लिए बहुत से भक्त लालायित रहते हैं। परंतु कोई बैकएंड सर्विस है, जैसे मानो बैकअप है या मंदिर का साफ सफाई है, ऐसा जो सिंपल सर्विस है, उसके लिए ज्यादा भक्त सामने नहीं आते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा कृष्णनाम प्रभु जी ने महाराज जी को प्रश्न पूछा। तो महाराज जी ने खुद के बारे में बताया कि वे जब न्यू वृंदावन में थे, वहां के विग्रह है राधा वृंदावन चंद्र। तो राधा वृंदावन चंद्र इस्कॉन के उस समय के सबसे प्रतिष्ठित विग्रह थे, क्योंकि एक तो बड़े विग्रह थे, इस्कॉन उस समय बहुत छोटा था, और वो जो विग्रह थे राधा वृंदावन चंद्र के बहुत ही बड़े थे, उसके साथ ही साथ बहुत ही सुंदर थे। पूरे अमेरिका में से अलग अलग जगह से लोग केवल दर्शन के लिए वहां पर आते थे कि इतने सुंदर विग्रह थे, और स्वयं श्रील प्रभुपाद भी राधा वृंदावन चंद्र जी का फोटो लेकर अलग अलग जगह पर दिखाते थे कि ये इतने सुंदर विग्रह है। तो ऐसे हाई प्रोफाइल राधा वृंदावन चंद्र जी के हेड पुजारी की सेवा परम पूज्य राधा स्वामी महाराज को एक साल के लिए मिली थी, वो वहां पे हेड पुजारी थे। परंतु महाराज जी कहते हैं, वो पूरे एक साल में मैंने एक बार भी भगवान के अर्च विग्रह का ड्रेसिंग नहीं किया, मैंने केवल बैकअप सर्विस ही किया, जो ड्रेसिंग करते हैं उनको असिस्ट किया। तो हम देखते हैं कि कैसे उनका विचार है, कि जैसे हम पढ़ते हैं कि रोज संसार दावा जो अपने मॉर्निंग मंगल आरती में, कि श्री विग्रहारा धन नित्यनी श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। तो श्रृंगार जो भगवान का श्रृंगार है और भगवान के मंदिर का मार्जन है, साफ सफाई है, दोनों सेवा बराबर है। परंतु ये ऐसे आचार्यों के गुरुजनों के व्यक्तित्व से हमें अनुभव मिलता है कि सच में ऐसा है, और हमको भी वो अपने जीवन में उतारना चाहिए। परंतु नैसर्गिक रूप से बहुत से भक्तों में ऐसा सेवा में थोड़ा प्रायोरिटाइज करते हैं भक्त भी कि मुझे ये चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए, परंतु जो वरिष्ठ भक्त है गुरुजन है उनके जीवन से हमको आदर्श लेना चाहिए कि जो भी भगवान की सेवा हमें मिलती है वे हमें अच्छे से करनी चाहिए। और टेकिंग हेल्प फ्रॉम सीनियर डिवोटीज स्पिरिचुअल मास्टर, अगर हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो नेचुरल होता है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वैष्णवों में भी कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर हम वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेंगे और उनका अनुकरण या फॉलो करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से जो दोनों में मतभेद है वो मिट जाएगा। शास्त्र में इसका उदाहरण है प्रिव्रत महाराज की स्टोरी में। प्रिव्रत महाराज का तपस्या पूर्ण हो गया और उनको अभी आश्रम चूज करना था। हमारे IYS के बॉयज में हमेशा कॉलेज पूरा हो गया, अभी क्वेश्चन आता है अभी कहाँ गृहस्थ बनू ब्रह्मचारी बनू, तो आश्रम चूज करना था। और उस समय नेचुरली ब्रह्मचारी लोग बोलते ब्रह्मचारी बनो, गृहस्थ बोलते गृहस्थ बनो। तो नारद मुनि बोले कि आप ब्रह्मचारी जीवन अच्छा है, आप ब्रह्मचारी बनो। और स्वयंभू मनु बोले कि नहीं, आपको जिम्मेदारी है, आपको गृहस्थ बनना चाहिए। तो अभी कंफ्यूज है क्या करना चाहिए, तो वरिष्ठों की दोनों का डिसएग्रीमेंट था, दोनों को भगवान की सेवा करनी है। ब्रह्मचारी भी भगवान की पूर्ण रूप से सेवा करते हैं, गृहस्थ भी परिवार को संभालते हुए भगवान की सेवा करते हैं। कोई भी आश्रम कम नहीं है, बुरा नहीं है, परंतु अभी ये दोनों वैष्णव स्वयंभू मनु और नारद मुनि दोनों भी महाजन हैं, दोनों महाजनों में अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि प्रियव्रत महाराज ने क्या करना चाहिए। तो उस समय तीसरे महाजन आते हैं ब्रह्मा जी, और वे बोलते हैं कि प्रियव्रत महाराज को गृहस्थ बनना चाहिए, और वो आशीर्वाद देते हैं सेइंग दैट प्लीज एक्सेप्ट गृहस्थ लाइफ एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फैमिली इंटेंगलमेंट। गृहस्थ जीवन का एक ही प्रॉब्लम है कि हम बहुत ही इंटेंगल हो जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं, और समय कैसे निकल जा रहा है इसका पता ही नहीं चलता है। वो हिरण की तरह हम घास खाते रह जाते हैं और पीछे से मृत्यु आके हमें झपट लेता है। तो इंटेंगलमेंट जो है गृहस्थ जीवन का, उससे ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि आप इसमें इंटेंगल नहीं होगे, आप भगवान के भक्त बने रहोगे। तो हमको चाहिए कि गृहस्थ जीवन निभाते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, परिवार की देखभाल करते हुए किस प्रकार हम इंटेंगल ना होए। इसलिए हमारे हाथ में हाथ से ज्यादा है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान वृंदावन बिहारी जी, वैष्णव, इनसे हम अगर प्रार्थना करेंगे और वे हमें आशीर्वाद देंगे, तो निश्चित रूप से हम भी इंटेंगल ना होते हुए गृहस्थ जीवन निभा सकते हैं। एक्सेप्ट द विल ऑफ सीनियर अथॉरिटीज विदाउट ईगो एंड अटैचमेंट फॉर ओन ओपिनियन। यूजली हमारा खुद का ओपिनियन रहता है और उससे हम अड़े रहते हैं, इसलिए हमारी प्रगति नहीं होती है। एक वरिष्ठ वैष्णव को हमने हमारे जीवन का एक प्रश्न बताया, तो उन्होंने हमें काउंटर क्वेश्चन ये किया कि आप हमें बताने आए हो या पूछने आए हो। मतलब केवल बताने आए हो तो हमारी राय का कुछ वैल्यू ही नहीं है, और अगर पूछने आए हो तो तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए कि हम जो बता रहे हैं उसका आप फॉलो करो, है ना। गुरु जी के सामने हम जाते हैं, महाराज जी हमारा ये समस्या है, और वो बताते हो, अगर हम नहीं कर रहे तो गुरु अपराध हो जाएगा। तो इसलिए हमको चाहिए कि अगर कुछ मतभेद है दो वैष्णव में, तो वरिष्ठ वैष्णव के पास, गुरुजनों के पास, काउंसिलर के पास जाना चाहिए, परंतु इस भाव से जाना चाहिए कि वे जो भी उपाय देंगे उसका हम पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, ना कि अपने ही मत के ऊपर अड़े रहेंगे। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो वैष्णवों के बीच में जो मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो भी कम हो जाएगी। संक्षिप्त में हम सब रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या सुना, और उसके पश्चात आज की कथा को विराम देते हैं। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार प्रचेताज की यूनिटी को देख के भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। उसमें हमने देखा कि रियल यूनिटी क्या है, कि भक्तों ने एक साथ आके भगवान की सेवा करना, यही रियल यूनिटी है, एकता है। फिर देखा कि हमें एक क्यों एकजुट क्यों होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। एक साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी यूनाइटेड स्टैंड अच्छे रहेंगे, और कैलामिटीज भी हमारे जीवन में आई तो वो भी हमें आनंद देगी। सच्ची एकता कैसे लाई जाए, तो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए विविधता में एकता भी हमने देखी, कि इस प्रकार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या अलग अलग प्रकार से भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। वैष्णव के बीच में अगर थोड़ा सा मतभेद है तो उसको हमें भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, उसे आध्यात्मिक ही समझना चाहिए। अश्वत्थामा की स्टोरी हमने देखी, और आखिर में हमने देखा कि किस प्रकार हमारे जीवन में अगर मतभेद होते हैं तो हमें वरिष्ठ वैष्णव की मदद लेनी चाहिए, अपने ओपिनियन पे आड़े नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।